नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर।
दोस्तों, ले आए हम आपके लिए 16 से 31 जनवरी का अंक। श्रोताओं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है और जनादेश तय होता है नागरिकों के वोट के अधिकार से। ऐसे में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो या नीति, पहल और आधुनिक तकनीक से चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, ये चुनाव सुधार के जरिए लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में दिए गए सिद्धांत वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का आदर्श ही वर्तमान और भविष्य के सुधारों का आधार है। हमारे संघ की आवरण कथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ही आधारित है।
इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में गरीब मरीजों के मसीहा मुनीश्वर चंद्र डावर, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा शांति विधेयक 2025, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, महान मूर्तिकार राम वंजी सुतार को श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, सुधारों का वर्ष बने 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलेख, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सहित उनके पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैक कवर पर राजस्थान के अलवर में सिलीसेट झील और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास कोपरा जलाशय को रामसर साइट्स घोषित किए जाने पर विशेष सामग्री समाहित है।
विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की सिद्धि की दिशा में अग्रसर भारत ने वर्ष 2025 में नया अध्याय जोड़ा है। वर्ष 2025 साक्षी बना है सांस्कृतिक गौरव का, अर्थव्यवस्था को नई गति देने का, कृषि नारी शक्ति गरीब युवा उत्थान का, विज्ञान समुद्र आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक गौरव की नई पहचान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष की उपलब्धियों पर एक लिंक्डइन पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में लिखा है कि भारत वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा है। ये हमारे लोगों के इनोवेटिव जोश के कारण संभव हुआ है। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखती है। वे नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स की सराहना करते हैं जिनसे प्रगति की गति तेज हुई है, जो राष्ट्र की विकास क्षमता को और अधिक सशक्त बनाते हैं। मैं अनेक लोगों से कहता रहा हूं कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की डेमोग्राफी, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य जज्बा है। 2025 को भारत के लिए एक ऐसे साल के तौर पर याद किया जाएगा जब उसने पिछले 11 सालों में हासिल की गई प्रगति के आधार पर सुधारों को एक लगातार राष्ट्रीय मिशन के तौर पर अपनाया। हमने संस्थानों को मॉडर्न बनाया, गवर्नेंस को आसान बनाया और लंबे समय तक चलने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ के लिए बुनियाद को मजबूत किया।
गांव और गरीब कल्याण केंद्र सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में बीते एक दशक में कई योजना और कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी कड़ी में संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी विकसित भारत जी राम जी पास किया गया, जो राष्ट्रपति की मंजूरी से कानून बन गया है। यह कानून गांव की सूरत बदलेगा और प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी भी देगा। ये महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर और विकसित गांव के दृष्टिकोण को मजबूती देगा। मनरेगा का नया अवतार विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। मनरेगा से जो अनुभव मिले उससे सीख लेते हुए सरकार एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहती है जो रोजगार के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में स्थायी विकास और आजीविका के साधन को मजबूत करे, क्योंकि विकसित भारत @2047 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यही वजह है कि एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के लिए मजदूरी रोजगार गारंटी की प्रति वर्ष 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। ये गरीबी कम करने और गांव में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कानून की विशेषताओं के बारे में बताते हैं।
ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इस राशि से काम कराने वाले हमारे साथी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा, ताकि वो ठीक से काम करा सके।
साल 2005 में कार्यान्वित होने के बाद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करने, ग्रामीण आय को स्थिर करने और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। समय के साथ ग्रामीण भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और लक्ष्य अत्यधिक बदल गए। साथ ही बढ़ती आय, बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, व्यापक स्तर पर डिजिटल पहुंच और अलग अलग तरह की आजीविका ने ग्रामीण रोजगार की आवश्यकताओं की प्रकृति को बदल कर रख दिया। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के तहत मनरेगा में व्यापक वैधानिक बदलाव कर उसे रिप्लेस किया गया है, जो जवाबदेही, बुनियादी ढांचे के परिणामों और आय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करता है।
मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, इस योजना के लिए इसी साल 1,51,282 करोड़ से रुपए अधिक की विशाल धनराशि प्रस्तावित है। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव और गरीब मुक्त रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के काम हाथ में लिए जाएंगे। विकसित भारत जी रामजी विधेयक की सभी जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है।
विश्व पुस्तक मेला 2026 इस वर्ष स्वतंत्रता के बाद से देश के लिए भारतीय सेना के योगदान को समर्पित रहा, जिसका शीर्षक था भारतीय सेना का इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम के प्रदर्शन के बाद यह आयोजन अपने आप में विशिष्ट रहा। वर्ष 1972 से शुरू हुआ ये मेला दुनिया भर के साहित्यिक कैलेंडर का महत्वपूर्ण आयोजन बनकर पुस्तक और पाठकों के बीच की दूरी को पाटने का काम कर रहा है।
इस वर्ष पुस्तक मेले का 53वां संस्करण 10 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ, जो 18 जनवरी तक चला। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेला के 600 से ज्यादा आयोजनों में 1000 वक्ताओं ने भाग लिया। इसमें 35 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक प्रकाशक शामिल रहे। इस वर्ष पुस्तक मेले में जल, थल और नभ की सेनाओं को साझा रूप से न केवल भारत की सुरक्षा पंक्ति बल्कि राष्ट्र की एकता के स्तंभ के तौर पर प्रदर्शित किया। इसमें भारतीय सेना के इतिहास, सुरक्षा एवं रणनीति पर 500 पुस्तकें शामिल रही, जिनकी रचना सेना में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों ने की है। विश्व पुस्तक मेले और पीएम युवा लेखक मार्गदर्शन योजना के तृतीय चरण की जानकारी पत्रिका में शामिल है।
ओजस्वी विद्यार्थी, कुशल प्रशासक और सबसे संघर्षशील नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपने साहस और पराक्रम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई शक्ति प्रदान की। विपरीत परिस्थितियों में करिश्माई नेतृत्व से देश की युवा शक्ति को संगठित किया। राष्ट्र के प्रति नेताजी की निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को 2021 से हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मातृभूमि के लिए उनका अद्वितीय त्याग, उनका तप और संघर्ष सदैव देश का मार्गदर्शन करता रहेगा। अपने पूरे जीवन का सुख त्याग करते हुए लगभग 35,000 किलोमीटर की यात्रा कार या पनडुब्बी से करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों को स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था। कलकत्ता से बर्लिन के रास्ते जापान तक की यात्रा कर भारत को आजाद करने का एक भव्य प्रयास करने वाले नेताजी ने बड़े गर्व, आत्मविश्वास और साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित करने वाले इन्हीं नेताजी की कल 23 जनवरी 2026 को देश ने 129वीं जयंती मनाई। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में अपने नेताओं को जाने कार्यक्रम के तहत कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। नेताजी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन पत्रिका में शामिल है।
समाज को आकार देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बेटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर भी लिंगानुपात घट रहा था। उसे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 22 जनवरी को 12वें वर्ष में प्रवेश किया है। देश आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मना रहा है। ये दिन याद दिलाता है कि जब बेटी को पोषण, शिक्षा और सम्मान मिलता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। देश भर में बाल लिंगानुपात गिरावट, जीवन चक्र की निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना जरूरी था। इसी उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के जिंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। हर बालिका को जन्म लेने, सुरक्षित रहने, पढ़ने, सपने देखने और नेतृत्व करने के अधिकार को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खाता, मातृत्व वंदना योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम आवास योजना सहित तमाम योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। इतना ही नहीं, विकसित भारत में नारी के नेतृत्व में विकास पर राष्ट्र फोकस कर रहा है। यही वजह है कि जन्म के समय लिंगानुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा। ये जो पुरानी सोच रही कि बेटी कभी कभी लगता है बोझ होती है, आज अनुभव कहता है, हर घटनाएं बताती हैं, बेटी बोझ नहीं, बेटी तो पूरे परिवार की आन बान शान है। हिंदुस्तान में देखिए आप, जब आसमान में हम जाते हैं सुनते हैं कहां सैटेलाइट गया, मंगलयान हुआ, डिकना हुआ, और जब देखते हैं तो पता चलता है कि मेरे देश की 3 महिला साइंटिस्टों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, तब पता चलता है कि बेटियों की ताकत क्या होती है। जब झुंझुनू की ही एक बेटी फाइटर जहाज चलाती है तो लगता है हां बेटियों की ताकत क्या होती है। ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लेकर के कोई आते हैं, मेडल लेकर के आते हैं, और पता चलता है कि लाने वाली बेटियां हैं, तो पूरा देश का सीना गर्व से भर जाता है कि हमारी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही है।
नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2019 से 2024 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया है। अध्ययन में पाया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक हैं। BBBP के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर ये पहल देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करती है।
सरकार की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि न सिर्फ सरकारी निकाय बल्कि गैर सरकारी स्तर पर भी बेटी को लेकर सोच बदली है। प्रत्येक बालिका को महत्व देने और उसकी सुरक्षा के लिए देश में एक मजबूत आधार तैयार हुआ है। अब योजना 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, जो देश में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करेगी।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका अब देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत।
नमस्कार।